देर रात तक आयु और आरव आयु के सूट में बैठकर बातें कर रहे थे। आरव ने आयु को आरिशा के मिलने की कहानी पूछी तो उसने सब कुछ बता दिया था कि कैसे उसे आरिशा मिली और उसके बाद वो फैज़ के यहाँ से अपने दादू के पास चली गई। उसके बाद लक्षित की मदद से उसने हॉस्पिटल ज्वाइन किया। लक्षित का नाम सुनकर आरव ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और उसके बारे में पूछा। आयु ने आरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी उसे घूर रही थी। तभी आरव ने उसको दोनों हाथों से पकड़ा और फिर से पूछा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, लक्षित कौन है? तुम जिस तरह से चुप हो उससे यही लग रहा है कि वो तुम्हारी लाइफ में बहुत खास है। अगर है भी तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अभी तुमने कहा ना कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। मैं अपनी लाइफ में किसी के साथ भी आगे बढ़ूं, ये मेरी चॉइस है, आयु ने आरव को खुद से अलग करके कहा। आयु अपनी बातों से आरव को चैलेंज कर रही थी। वो एविल स्माइल करते हुए बोला, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, लीगली अभी भी तुम मेरी वाइफ हो। अगर डिवोर्स हो भी गया होता तो मुझे अच्छे से पता है कि किसे अपने रास्ते से किस तरह हटाना है। अपनी बात कहकर आरव वहां से उठा और सूट के बेडरूम में जाने लगा। आयु को लगा कि वो उसे नाराज हो गया है, फिर भी उसने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आयु ने आरव के पीछे से मुंह बनाकर धीरे से कहा, ये समझता क्या है अपने आप को? मैंने इतनी इमोशनल स्टोरी सुनाई, सब कुछ बताया, सब कुछ सुनने के बाद इसे मुझसे मेरी खैर खबर पूछनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि यहाँ मुझ पर शक कर रहा है। अब तो कभी नहीं बताऊंगी कि लक्षित कौन है। आयु आरव से नाराज होकर मुंह बनाकर बैठी थी। आयु को लगा आरव चला गया तो वो धीमे कदमों से चलकर अपने बेडरूम में जा रही थी। तभी उसने देखा आरव एक झपके से उसके सामने आया। उसके हाथ में आयु का मोबाइल था। आरव ने जबरदस्ती आयु का हाथ पकड़ा और उसके फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने लगा। आयु हैरानी से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम और मेरा मोबाइल लेकर क्यों आए हो? लिसन, तुम्हें ये सब करने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकती हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे अपना सही गलत समझना आए। बोलते हुए आयु आरव के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरव ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया था। फिर आरव ने आयु को घुमाकर अपनी बाहों में लिया और उसे एक हाथ से कंट्रोल में ले लिया था। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे कि उनकी पूरी बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई थी। आयु आरव से दूर होने के लिए हाथ पैर मार रही थी, लेकिन तभी आरव सख्त आवाज में बोला, जो कर रहा हूँ करने दो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। कहा ना, शांति से खड़ी रहो। आयु कुछ कहती उससे पहले आरव ने आयु के मोबाइल में लक्षित का कॉन्टैक्ट ढूंढकर उसे कॉल लगा लिया। आरव की इस हरकत पर आयु गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन आरव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आरव ने कॉल स्पीकर पर कर रखा था। जहां देहरादून में इस वक्त रात के 3:30 का टाइम हो रहा था, वहीं लंदन में इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। लक्षित उस वक्त हॉस्पिटल से घर आ रहा था, वो गाड़ी में था। आयु का कॉल देखकर उसके फेस पर हल्की स्माइल आ गई और उसने कॉल रिसीव करके कहा, मैंने तो सुना था कि तुम लीव पर गई हो और वहां जाकर भी मुझे मिस कर रही हो। इसका मतलब सनम बिल्कुल ठीक कह रही थी, यू लाइक मी। लक्षित आयु को परेशान करने के लिए जानबूझकर ऐसा बोल रहा था। आयु पहले से ही आरव की हरकतों की वजह से गुस्सा थी। ऊपर से लक्षित की बातें सुनकर उसका टेम्पर और हाई हो गया। वो उस पर चिल्लाकर बोली, डॉक्टर जैन, आपको गलत फहमी में रहने की आदत हो गई है शायद। वन मोर थिंग, मैंने आपको कॉल नहीं किया, आरिशा ने आपको कॉल कर दिया था। अब बच्चे हैं, बच्चों की हरकतों पर क्या सफाई दी जा सकती है? लक्षित ने उसकी बात पर बौहें उठाकर मुस्कुराकर कहा, रियली डॉक्टर ओबेरॉय, इंडिया और लंदन के टाइम में कितना डिफरेंस है ये तो सब जानते हैं। अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं तो इस वक्त वहां 4:00 के आसपास का टाइम होगा। कैसी पेरेंट है आप? आपकी बेटी देर रात तक जाग रही है और आप यहाँ अपने क्रश को कॉल कर रही है। आयु उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले आरव ने कॉल कट कर दिया। लक्षित से बात करने के बाद वो आयु को सर्द निगाहों से देख रहा था। आयु ने कंधे उठाकर कहा, देखो मैं नहीं जानती ये क्या बकवास कर रहा है, मैं इसे कोई लाइक वाइक नहीं करती हूँ। इसे तो क्या, मैं तो दुनिया के किसी लड़के को लाइक नहीं करती हूँ, सब एक जैसे होते हैं, तुम्हारी तरह धोखेबाज। लेकिन मैंने यहाँ किसी को धोखा नहीं दिया, मैं तो आज तक सिंगल हूँ, आरव ने जवाब दिया। हाँ तो मैं भी सिंगल हूँ और तुम बार बार मुझसे आकर चिपक क्यों रहे हो? मैंने बोल दिया मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे अभी तक नाराज हूँ। अगर मेरा उसके साथ अफेयर चल भी रहा है तो मैं तुम्हें कोई आंसर नहीं देने वाली हूँ, ओके? आयु ने चिढ़कर कहा और आरव को खुद से अलग कर दिया। वो अब सोने के लिए बच्चों के पास जा रही थी, आरव भी उसके पीछे पीछे आ गया। आयु जब बच्चों के पास सो रही थी तब जानबूझकर उसने आयु को थोड़ा दूर खिसकाया और खुद उसके पास आकर सो गया। आयु जब उसकी तरफ गुस्से में देखने लगी तो आरव ने सिर हिलाकर कहा, मुझे बच्चों के पास सोना है, अब क्या अकेले जाकर अपने कमरे में सोऊंगा? मुझे आर्या के बिना सोने की आदत नहीं है। हाँ तो जाकर आर्या के पास सोना, मुझसे क्यों चिपक रहे हो? पता नहीं प्रॉब्लम क्या है इसकी, आयु ने दांत पीसते हुए कहा। वो मैं सोच रहा था कि पिछले कई सालों से आर्या के साथ ही सो रहा हूँ, आदत तो मुझे तुम्हारे बिना सोने की भी नहीं थी। अब इतने टाइम बाद तुम मिली हो तो तुम्हारे साथ ही सोऊंगा ना। आरफ ने इविल स्माइल करते हुए कहा और आयु को अपने पास खींच लिया। आरफ को कुछ भी कहना बेकार था, ये बात आयु अच्छे से जानती थी, तो उसने आरफ से कुछ नहीं कहा, बस वो आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में आयु को तो नींद आ गई थी, लेकिन आरफ सोते हुए उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। आरफ ने आयु के फॉरहेड पर किस किया और फिर अपने मन में कहा, तुम नहीं जानती पर मैं इस लम्हे के लिए तरस गया था जब फिर से तुम मेरी बाहों में मेरे इतने करीब आओगी। मेरे दिल ने तो उम्मीद तक छोड़ दी थी, पर थैंक्स टू डेस्टिनी जो हम दोनों की इतनी गलतियां करने के बावजूद हमें वापस एक कर ही देती है। आयु नींद में थी तो आरव ने उसे खींचकर अपने और भी करीब कर लिया और फिर अपनी बाहों में लेकर सो गया। इतने सालों बाद आरव बिना किसी दवाई या ड्रिंक किए हुए सुकून से सो पा रहा था। अगली सुबह आयु की आंख खुली तो दोनों बच्चे अब तक सोए हुए थे, यहां तक कि आरव भी नींद में था। इतने टाइम बाद आरव को सुकून भरी नींद आई थी तो वो देर तक सो रहा था। आयु आरव से भले ही गुस्सा हो लेकिन उसके दिल का प्यार अभी भी कम नहीं हुआ था। आरव को सोते हुए देखकर वो उसे प्यार से देखने लगी। आरव के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे जिसे आयु धीरे धीरे सही कर रही थी। आयु ने आरव को देखकर गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने मन में कहा, पता नहीं मैं इस इंसान से प्यार क्यों करती हूँ जबकि इसकी वजह से मुझे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये जैसा भी है इसने मेरे बेटे को बहुत प्यार से पाला है जबकि मुझे अच्छे से पता है इसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है।
कुछ देर आरव के चेहरे को देखने के बाद आयु वहां से उठकर जाने को हुई, तभी आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और अपने ऊपर ले लिया। आरव ने आयु की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी अभी भी ये आदत गई नहीं ना कि जब मैं नींद में होता हूँ तभी तुम्हें मुझ पर प्यार जताना होता है। अगर ये काम मेरे जागते रहते करती तो मुझे अच्छा फील होता। चलो बताओ क्या सोच रही थी मुझे देखकर। आयु का चेहरा लाल हो गया था जैसे उसकी कोई बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। तुम छोड़ो मुझे, बच्चे उठ जाएंगे, इस तरह हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आयु ने आरव से दूर होने की कोशिश की। और क्या बोलेंगे, यही कहेंगे कि उनके मॉम डैड बहुत रोमांटिक हैं। मॉम इतनी रोमांटिक नहीं है जितने डैड हैं और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, आरव ने आईविंग करके कहा। आयु ने आरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो आरव ने फिर से कहा, अच्छा बताओ ना आगे का क्या प्लान है। वापस मुंबई अपने घर चलते हैं, दादी वहां वेट कर रही होगी। तुम्हें पता है साक्षी और अयान ने शादी कर ली। साक्षी का शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी वो मान ही गई। चलो उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरे लिए यही काफी है। और मैं तुम्हारे साथ मुंबई नहीं जा सकती, मैंने हॉस्पिटल से सिर्फ एक हफ्ते की लीव ली है, मुझे वापस लंदन जाना होगा। वहां अरीशा का स्कूल है और मेरा हॉस्पिटल भी, तो हम इस तरह सब कुछ छोड़कर नहीं आ सकते, आयु ने जवाब दिया। आरव ने कुछ पल सोचा और फिर आयु से कहा, ठीक है फिर हम चलते हैं, तुमने 1 वीक का लीव लिया है उसमें अभी टाइम है, तो पहले मुंबई होकर आते हैं फिर साथ में लंदन चलेंगे, आफ्टर ऑल तुम्हारे उस लक्षित से भी मिलना है। आयु ने आरव से इस डिसीजन की उम्मीद नहीं की थी, वो अपना पूरा काम छोड़कर आयु के साथ लंदन आने तक को तैयार हो गया था। आयु ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे और तुम भी जब चाहो तब अरीशा से मिलने आ सकते हो। आयु बोल रही थी तभी आरव ने आयु को पकड़कर नीचे लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। आरव ने आयु की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, मिसेस खुराना अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो आगे से मेरी बात मत काटना, मैं जानता हूं मेरी गलती बड़ी थी और तुम इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती हो, मैं कह भी नहीं रहा, तुम अपना टाइम ले सकती हो, तुम कहोगी तो तुम्हें टच भी नहीं करूंगा लेकिन अपनी नजरों से दूर जाने की परमिशन कभी नहीं दूंगा। आयु ने हाँ में पलकें झपकाई, फिर वो कुछ पल रुककर धीरे से बोली, हाँ ठीक है लेकिन मेरे ऊपर से तो खड़े हो जाओ, तुमने अपना सारा बॉडी प्रेशर मेरी बॉडी पर डाल रखा है। आयु के कहने पर आरव को भी एहसास हुआ, वो जल्दी से खड़ा हुआ और आयु से कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो अब रेडी हो जाओ, हम तुम्हारे दादू के यहाँ जा रहे हैं। पागल हो गए हो क्या, वहाँ पूरी फैमिली है, उन्होंने मुझे देखा तो फिर से तमाशा करेंगी, वो मुझसे नाराज हैं तो उन्हें रहने दो, मुझे नहीं जाना उनके सामने, आयु ने आंखें बड़ी करके कहा। उसने आरव से साफ मना कर दिया था कि वो ज्ञान जी के फार्म हाउस नहीं जाएगी। आरव ने जवाब में कहा, मैंने सब खराब किया है तो सब ठीक भी मैं ही करूंगा, अब कोई बहस नहीं करनी है, चुपचाप तैयार हो और दोनों बच्चों को उठाकर रेडी करो, आरव ने काफी सख्ती से कहा था और फिर अपने सुइट में चला गया। उसके जाने के बाद आयु ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, इस खुडूस खुराना का कुछ नहीं हो सकता, पहले खुद रायते फैलाता है और फिर समेटने के लिए मुझे सामने कर देता है। आयु ने आईज रूल की और दोनों बच्चों के पास आकर उन्हें उठाने लगी। फिलहाल के लिए आयु अपनी फैमिली को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी लेकिन आरव की जिद के आगे उसका कोई बस में नहीं चल रहा था। दोनों बच्चों को जगाने के बाद आयु ने उन्हें तैयार किया और उनसे कहा, मैं रेडी हो रही हूँ, जाकर तब तक अपने डैड को परेशान करो और मेरी मानो तो उनकी नाक में दम कर देना ताकि वो आज कमरे से बाहर निकलने के बारे में सोचे भी नहीं।
अगर आप यही चाहती हैं तो यही होगा मॉम, आरिशा ने आई विंग करके कहा, जिस पर आर्या ने थम्स अप किया। वो दोनों आयु की बात मानने के लिए पूरी तरह तैयार थे। आर्या और आरिशा वहां से चले गए। आयु उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। उनके जाते ही वो धीरे से बोली, ये ठीक है, मेरे पास मेरी खुद की आर्मी है आरफ खुराना। अब मुझे जो भी बात मनवानी होगी तो मैं अपने बच्चों की हेल्प से मनवा ही लूंगी। आयु ने अपना बैग खोला और कपड़े निकालने लगी। पहले वो कहीं भी जाने के लिए इतना नहीं सोचती थी, पर आरफ के आ जाने के बाद न जाने क्यों अब उसे अपने कोई भी कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने पूरा बैग फैला लिया था, फिर भी उसे कुछ ढंग का पहनने लायक नहीं मिला। आयु ने परेशान स्वर में कहा, हद है यार, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, वो भी उस इंसान के लिए जिसके सामने मैं कुछ भी पहन कर जाऊँ उसे अच्छा ही लगेगा। फिलहाल तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इनमें से ही कुछ पहनना होगा। आरिशा के जिद करने पर आयु ने सभी शॉर्ट ड्रेस ही खरीदी थी। यहाँ तक कि उसके सारे कपड़े आरिशा से मैच करते थे, इसीलिए वो थोड़े बच्चों टाइप का लुक दे रहे थे। आयु ने अपने लिए ब्लैक कलर का शॉर्ट डेनिम मिडी फ्रॉक निकाला जो स्लीवलेस था। आयु ने उससे मैच करते शूज पहने और आरफ के रूम में गई। इस लुक में वो बहुत क्यूट लग रही थी। आर्या और आरिशा जहाँ आयु को देखकर बहुत खुश हुए, तो वहीं आरफ ने आईज रोल करके कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते मिसेस खुराना, दो चोटियां बना लो और फिर उनमें मैचिंग हेयर क्लिप और रबर बैंड भी डाल लेना। आयु ने आरफ की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, मेरे पास यही पहनने के लिए है, अगर तुम्हें मेरे कपड़ों से कोई दिक्कत है तो मुझे साथ लेकर मत चलो। आयु को आरफ के साथ ना जाने का एक और बहाना मिल गया था। वो वहां से जाती तभी उसकी नजर आरफ के मोबाइल पर पड़ी, जिस पर इस वक्त माहिरा का कॉल आ रहा था। जैसे ही आयु ने माहिरा का कॉल देखा, उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए। आयु को माहिरा से कभी जलन नहीं थी, क्योंकि वो आरफ को अच्छे से जानती थी। आरफ उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन इस वक्त आयु के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आरफ खुद हैरान था। वो कुछ पूछता, उससे पहले आयु तुरंत वहां से दौड़कर चली गई।